हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अनाही उसके सीने से लगी रही। कुछ पल ऐसे ही बीत गए जहाँ दोनों की सांसें एक दूसरे की धड़कनों में घुल सी गईं। हवा हल्की हल्की चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां सरसरा कर जैसे खामोशी में कोई लोरी गा रही हों। रुहान ने धीरे से अपनी नर्वसनेस को छुपाते हुए कहा, मैडम जी, मुझे और भी बहुत खूबसूरत चीज दिखानी है आपको। आप अभी से मुझे थोड़ी थकी हुई लग रही हैं। इतना बोलकर रुहान ने उसके सिर पर हल्का सा हाथ फेरा, बिल्कुल वैसा जैसे किसी टूटे हुए पंख को सहलाकर फिर उड़ने लायक बनाया जाता है। धीरे से बोला, मैडम जी, अगर कभी भी आपको लगे कि ये दुनिया थका रही है तो आपको ये याद रखना चाहिए कि मेरा कंधा हमेशा आपके सहारे के लिए हाजिर है। अनाही की सांसें भर भर आ गईं, पर उसने खुद को मजबूत रखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, सच में, बस कभी कभी दिल भारी हो जाता है। रुहान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसकी आंखें देखीं। उन आंखों में दर्द था, पर कहीं गहराई में उम्मीद की एक छोटी सी लौ भी चल रही थी, जो शायद रुहान ने ही जलाई थी। दिल भारी होने दो, रुहान ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा। अनाही ने उसकी आंखों में वो सच्चाई देखी जो लंबे समय से किसी में नहीं मिली थी। उस पल उसे एहसास हुआ, रुहान उसके लिए सिर्फ एक सहारा नहीं, बल्कि वो इंसान है जो उसके टूटने का डर नहीं रखता, बल्कि उसके टूटे हिस्सों को थामने की हिम्मत रखता है। अनाही का गला भर आया, उसने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। आपने कहा था ना, इस जंगल के उस पार कुछ बहुत खूबसूरत दिखाना है मुझे। रुहान ने उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में धीरे से फंसा लिया। हाँ, पर आज आप मेरे साथ चल रही हैं, बस यही सबसे खूबसूरत है। अनाही ने थोड़ा हैरान होते हुए रुहान की तरफ देखा। रुहान पहली बार उससे ऐसी लवी डवी बातें कर रहा था, वरना तो वो हमेशा सिर्फ कन्फ्यूज और नर्वस ही रहता है। रुहान भी अपनी शर्म को छुपाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, फ्लर्टी लाइन उसने खुद बोली थी, लेकिन अब अनाही से ज्यादा खुद शर्मा रहा था। उसकी कनपटी लाल होने लगी थी। वो मजबूती से अनाही का हाथ पकड़े धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी निगाहें अब वापस अनाही की तरफ नहीं मुड़ रही थीं, उनमें एक अजीब सी हया थी। जंगल का रास्ता लगभग खत्म होने ही वाला था। पेड़ों की घनी कतार अचानक से छूट गई और उनके सामने एक खुला शांत सा इलाका आ गया, जहां हवा में नमी थी और जमीन थोड़ी ठंडी। अनाही ने महसूस किया कि जैसे कोई हल्की हल्की ठंडक उसके चेहरे को छू रही हो। रुहान ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की, फिर धीमे से बोला, बस दो कदम, फिर मैं कहूँगा, तब आप अपनी आँखें बंद करना। अनाही ने उसे देखा। रुहान अभी भी नर्वस था, उसके कान तक गुलाबी हो रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक थी, जैसे वो किसी बहुत प्यारी चीज को किसी बेहद प्रिय इंसान को दिखाने वाला हो। दो कदम चलते ही रुहान उसके सामने खड़ा हो गया। उसने अनाही के कंधों को हल्के से पकड़ा और कहा, अब आंखें बंद। अनाही ने आंखें बंद कर लीं। रुहान ने उसकी उंगलियों को अपने हाथ में लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ाया। जैसे ही वे कुछ कदम और चले, अचानक गिरते पानी की आवाज साफ सुनाई देने लगी, कड़क नहीं बल्कि बेहद सुकून देने वाली। रुहान ने उसके सामने आकर उसकी आंखों के पास हाथ रखते हुए कहा, खोलिए। अनाही ने धीरे से आंखें खोलीं और सामने का दृश्य देखकर उसकी सांस भीतर ही अटक गई। एक खूबसूरत चौड़ा झरना सफ़ेद झाग बनाते हुए नीचे गिर रहा था। धूप की हल्की किरणें पानी पर पड़कर एक सौम्य सी चमक पैदा कर रही थीं। झरने के आसपास छोटे छोटे फूल खिले हुए थे और पानी के किनारे पतली ठंडी धुंध सी तैर रही थी। अनाही ने अनायास ही अपने होंठों पर हाथ रख लिया। ये जगह तो, रुहान ने नरम मुस्कान के साथ कहा, आपको पसंद आई? अनाही उसकी ओर मुड़ी, उसकी खूबसूरत सी आंखें हल्की सी नम थीं। रुहान जी, ये जगह किसी कहानी की तरह लग रही है, इतनी सुंदर, इतनी शांत। रुहान उसके बिल्कुल पास खड़ा हो गया। उसने झरने की ओर देखते हुए कहा, जब भी मुझे लगता था कि दुनिया बहुत शोर कर रही है, मैं यहाँ आता था, लेकिन आज पहली बार मुझे लगा कि ये जगह पूरी है। अनाही ने समझते हुए पूछा, क्यों? रुहान ने गहरी सांस लेते हुए धीमे से कहा, क्योंकि आज आप यहाँ हैं। अनाही का दिल एक पल को धक से रुक गया। वो कुछ बोल पाते उससे पहले रुहान झरने की ओर बढ़ा। उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, चलिए पास से देखते हैं, पानी बहुत ठंडा होता है पर दिल को हल्का कर देता है। अनाही थोड़ी हिचकिचाकर बोली, मैं गिर ना जाऊं? रुहान उसकी ओर मुड़ा और मुस्कुराकर बोला, मैं हूं ना, आप गिरेंगी नहीं, अगर गिरी भी तो पकड़ लूंगा। इस बार अनाही ही शर्माकर नीचे देखने लगी। रुहान उसके पास आया, उसकी उंगलियों को फिर से थाम लिया। दोनों झरने के बिल्कुल करीब पहुंच गए। पानी की बूंदें उनके हाथों, चेहरों, बालों पर गिर रही थीं। अनाही ने आंखें बंद करके हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली पर गिरती ठंडी बूंदें जैसे उसके दिल के बोझ को थोड़ा थोड़ा धोने लगीं। रुहान धीरे से बोला, देखा, कहा था ना, ये जगह आपकी है। अनाही ने आंखें खोली, रुहान को देखा और बहुत वक्त बाद बिना किसी मजबूरी के उसके होठों पर एक सच्ची मुस्कान आई। उसने अपनी भरी आंखों को उठाकर रुहान की तरफ देखा और फिर आगे बढ़ते हुए अपनी दोनों बाहों को रुहान के गले में डाल दिया। रुहान ने थोड़ा घबरा कर कहा, आप ये क्या कर रही हैं मैडम जी, ऐसे तो हम दोनों गिर जाएंगे। अनाही ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और आंखें बंद करते हुए उसके होंठों पर आहिस्ता से अपने होंठ रख दिए। वो बेहद धीरे धीरे उसे किस कर रही थी। रुहान के लिए ये फीलिंग नहीं थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि उसका कंट्रोल ऐसे तो छूट जाएगा, इसलिए उसने अनाही की कमर पकड़ते हुए कुछ देर बाद ही अनाही को खुद से अलग कर दिया और फिर गहरी सांसें लेते हुए अपनी नशीली आंखों से अनाही के चेहरे को देखने लगा, जो थोड़े कन्फ्यूजन में उसे देख रही थी। अनाही ने फिर धीरे से कहा, क्या आपको मेरा यहाँ किस करना पसंद नहीं आया? रुहान ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं मैडम जी, आप ऐसी बातें मत करिए, मैं तो मर रहा हूँ आपके किस के लिए, आपका किस मुझे कैसे पसंद नहीं आ सकता है। उसके ये बच्चों जैसी बात सुनकर अनाही फिर से मुस्कुराई। रुहान ने उसे बाहों में उठाया और फिर वापस झरने से दूर आ गया। रुहान ने उसे एक पेड़ के नीचे अपनी बाहों से उतार दिया और फिर उसकी पीठ उस पेड़ के तने से लगाते हुए हल्के से झुककर बोला, अब करता हूँ ना तसल्ली से आपको कि आपको पता चलना चाहिए मुझे आपका किस करना कितना अच्छा लगता है। उसकी ये तलब देखकर अनाही थोड़ा घबरा गई। उसने रुहान की आंखों में देखा जहाँ बहुत सारा नशा छाया हुआ था। रुहान ने आहिस्ता से झुकते हुए फिर से उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और अपनी आंखें बंद कर लीं। अनाही धीरे धीरे उसका साथ देने की कोशिश कर रही थी। उनकी ये छोटी सी किस बढ़ते पलों के साथ गहरी होती जा रही थी। वक्त जैसे उन दोनों के लिए थम सा गया था। थोड़ी देर बाद जब रुहान को एहसास हुआ कि अनाही को सांस नहीं आ रही थी, तो उसने धीरे से उसके होंठों को छोड़ दिया और फिर उसके सर से अपना सर छूते हुए गहरी सांस लेते हुए बोला, मैडम जी, क्या आप अब यहाँ घूमने के लिए आएंगी मेरे साथ? अनाही भी अपनी सांसों को समेटने की कोशिश कर रही थी। उसने करीब दो मिनट बाद धीरे से कहा, हाँ जरूर, अब हम एक हॉलीडे जरूर प्लान करेंगे, जिस दिन हम सिर्फ यहाँ आएंगे, और आप हर बार मुझे एक नए जानवर से मिलवाना जिसकी खूबसूरत सी स्टोरी हो आपके पास। क्या आपने सब जानवरों के नाम रखे हैं? ये सुनकर रुहान मुस्कुरा उठा। उसने जल्दी से एक्साइटेड होकर कहा, आपको मेरे नाम पसंद आए क्या? मैंने सबके नाम रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। वो जैसे दिखते हैं या फिर जैसा काम करते हैं, पहले उसके अकॉर्डिंग उनका नाम रखा है। जैसे शुगर बेबी मुझे बहुत प्यारी लगती है, एकदम मीठा एहसास होता है उसके पास जाने पर। ऊपर से वो सफ़ेद भी है, इसलिए मैंने उसका नाम शुगर रखा था। और ब्राउनी, वो पूरा ब्राउन कलर का है इसलिए। अनाही शांति से रुहान की हर बात सुन रही थी। थोड़ी देर बाद रुहान उसका हाथ पकड़े उसे अपने उस छोटे से क्वार्टर के पास लेकर जा रहा था। वहां जाकर रुहान ने अपने सारे हथियार दिखाए जिसके जरिए वो जानवरों की मदद करता है, और साथ में अपने दोस्तों के बारे में भी बताया जो कि यहाँ आते रहते हैं, जिनमें से एक मोहिनी थी। रुहान ने अपना फ़ोन निकालकर अनाही को सबकी फ़ोटोज़ दिखाई, लेकिन थोड़ा डरते हुए, कहीं बाकी लोगों की तरह अनाही भी तो उसे मोहिनी से दोस्ती करने के लिए जज नहीं करेगी कि वो लड़कियों से दोस्ती रखता है।